अध्याय सात, पूंजी की ललमुनिया। वैसे तो 70 के दशक में ही न सिर्फ श्रम के अध्येताओं बल्कि विश्व बैंक आदि संस्थाओं का भी ध्यान श्रमिकों के तथाकथित सुविधाभोगी तबके के समानांतर पनपे अकुशल और असंगठित कामगारों के बृहदाकार अनौपचारिक क्षेत्र की ओर जा चुका था। पर भूमंडलीकरण के बाद हायर एंड फायर की व्यवस्थात्मक नीतियों के महत्तम प्रसार के कारण शहरों में खदानों, मिलों, कारखानों के हाशिए पर न सिर्फ उसका अमीवा पिंड बढ़ा है बल्कि उसकी समस्याएं भी गहनतर हुई हैं। और जैसा कि हर नव विस्थापित समूह के साथ होता है, यहाँ भी आर्थिक भावनात्मक असुरक्षाओं से उद्भूत बहुस्तरीय दोहन का सबसे स्पष्ट शिकार उसकी महिलाएं हुईं। कम पगार और उपभोक्तावाद के आग्रह से क्षण क्षण आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का समाधान अनौपचारिक सेक्टर के मजदूर दो दो पालियों का काम ढूंढ कर करते हैं, जिसके कारण उनका मन शरीर थक कर ढूह हुआ रहता है। कहीं भी लुढ़क जाने को तत्पर, प्लेटफॉर्म, फुटपाथों पर, वेश्यालयों में, ठर्रे की दुकानों पर। समय की भी इतनी कमी रहती है कि थकान उतारने के नाम पर ज़्यादातर तो इतना ही हो पाता है कि प्याली की चाय तस्तरी में डालकर सुर सुर पी गए, या इसी लय में मिनट दो मिनट या अपनी अपराई किसी औरत का शरीर सुड़का और अगले ही क्षण उसे परे धकेल कर मारपीट कर पंचिंग बैग के रूप में उस पर अपनी खुदरा खंदकें निकाल कर भाग गए काम पर वापस। कमाई का दूसरा आसान स्रोत मोटे असामियों के हाथ नन्ही नन्ही बच्चियों का विक्रय भी है ही। नन्ही बच्चियाँ इसलिए कि उनके साथ की मनमानी एड्स के खतरों से उबारे रखती है। भूमंडलीकरण ने दूसरा बड़ा बखेड़ा उठाया है, उत्पादन को बाजार से काट कर पणियों का उत्पादन कहीं और होता है और भोग कहीं और उसका नतीजा यह कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं में नाम मात्र का संबंध नहीं रहता। कई बार तो उपभोक्ताओं की कल्पना में भी नहीं समाता कि उत्पादक उनके उपभोग की चीज़ें तैयार करते हुए कैसी मारक स्थितियों से गुजरे हैं। एक प्रसिद्ध विज्ञापन के अनुसार हीरा है सदा के लिए, किंतु हीरा पॉलिश करने वालियों का जीवन सूरत की तंग कोठरियों में तिल तिल कर गलता हुआ उन मालिकों को भी नहीं दिखता जो वातानुकूलित कमरों में बैठे बैठे वीडियो कैमरे की आंखें लगातार इन्हीं पर टिकाए रखते हैं कि काम करते हुए हीरे की एक कणिका भी मार तो नहीं ली गई। वैसे तो 1860 के दशक से सोशल डार्विनिज्म का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला नारा अपने रंग दिखा रहा है। स्क्रूज स्थापना द्वारा की जो हाशिए पर हैं, किसी कारण जिनका आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास नहीं हो पाया है, वे अनफिट हैं और फालतू हैं। पर भूमंडलीकरण के बाद तो इनके विद्रूपीकरण का कोई हद हिसाब ही नहीं रहा। एक विडंबनापूर्ण बात इस संदर्भ में यह भी हुई कि भूमंडलीकरण ने पूंजी के पाँव में पंख बांध दिए। वह तो लोकगीत के ललमुनिया की तरह विश्व भर में फुदकने चाकने को स्वतंत्र हो गई। उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया बर्फी के सब रस ले लिया रे, पर बर्फी तो दूर, सूखी रोटी के लिए भी तरस गए मजदूर। आर्थिक भावनात्मक दोनों संरक्षणों के लिए अधिक से अधिक स्थानीय होते चले गए। उनकी और उनकी हेल्पमेट्स की स्थिति खूंटे में बधी गाय गोरु की ही हो गई। एक निश्चित वृत्त में ही घूम टहल कर वे चल सकते थे, कुल्लू का बैल बन गए थे वे, और मोबिलिटी उनके लिए आँख का धोखा हो गई। पूंजी की तरह मजदूरों को भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का फ्री वीजा नहीं मिला, पर हाँ, उनकी औरतों और लड़कियों को अरब शेखों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के हाथ बिकती चले जाने को स्वतंत्र हो गई। उपभोक्तावाद क्षणवाद को बढ़ावा देता गया। टू मिनट्स प्लीज, फील इट, शट इट, फॉरगेट इट आदि के कैप्शन अंतरंग मानवीय संबंधों पर भी घटित होते दिखने लगे। यह उस हृदयहीन उपयोगितावाद का ही नया रूप था जो औरत को पानी के गिलास और लदे हुए गर्भ के सिवा कुछ मानता नहीं था, और दलित कवियत्री स्वरूपा रानी की पंक्ति नए नए संदर्भों में खुलती चली गई। घर में पुरुष अहंकार एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो गली में जाती अहंकार दूसरे गाल पर। अभी भी ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट माथे पर, और 9 महीने का बच्चा गर्भ में लादे बीच सड़क खड़ी मजदूर औरत का बिंब उत्पादन और प्रजनन का एक आदिम घालमेल हमारे सामने जगह जगह खड़ा करता है। चूंकि पगार की दर प्रति ईंट के हिसाब से तय होती है, इसलिए मजदूर औरतों का जोर रहता है कि एक बार में ही अधिक से अधिक ईंट उठा लें और कभी कभी तो उनके सिर का बोझ 30 किलोग्राम तक हो जाता है। उनके लिए कौन सी सदी बदली, कौन सा नया विज्ञान आया, यह सोचने की बात है। मध्यवर्गीय संदर्भ में भूमंडलीकरण कहते हैं स्त्री के 3 रूप उभर कर सामने आते हैं। क, तरह तरह के मेकअप में दबी ढकी, बेहद दुबली, अक्षत यौवना, बारबी गुड़िया। ख, हॉर्लिक्स, मैगी, सॉस, तरह तरह के साबुन और शैम्पू, खिलौने, बिस्किट, फैंसी ड्रेस की टिकटें खरीदती सुपर बायर, सुपर मम्मी का। ग, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, विमान परिचारिका, सेल्स गर्ल, मॉडल, दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में नियुक्त लड़कियों का या लोअर डिवीजन क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनो आदि का। जिनके सिर ठुंकी पड़ी है बस की धक्का मुक्की, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक, एक नए तरह की पर उनकी ही नीरस अर्चनात्मक कार्यावली, तरह तरह की डांट फटकार या बॉस गॉड फादर का यौन दोहन, तदजन्य अपराध बोध, कुंठाएं, अन्य विकृतियां, गृह कलह, खंडित मातृत्व आदि कलंक। उत्तर फोल्ड समाज के दोहरे श्रम बाजार का यह कमाल है कि एंड्रोजेनी की आदर्श स्थिति की अवहेलना करते हुए लड़के अति मर्द होते जा रहे हैं, लड़कियां अति नारी। लड़कों का आदर्श हिंसा के प्रति इम्यूनिटी जगाते WWF के मुस्टंडे खिलाड़ी दूसरे क्रिकेट स्टार या लड़ाकू फिल्म स्टार, स्पाइडरमैन, मैचोमैन, सुपरमैन, ही मैन, जबकि लड़कियों का आदर्श सिगरेट सी पतली टांगे, मुट्ठी भर कमर और मटकती आंखों वाली बारबी गुड़िया। वैविध्य का, अपनी खास व्यक्तिकता, वैयक्तिक आभा का भी कहीं कोई स्कोप ही नहीं दिखता। जैसे चॉकलेट के किसी ब्रांड के 50 स्लैब्स, एक रंग ढंग, एक पैकिंग के, वैसे ही 50 आदमी भी एकदम एक से एक जैसी भाषा, एक जैसा हाव भाव, एक जैसी सोच समझ, जैसे आदमी न हुए टॉफियां हो गए। लेकिन याद रहे, जो आदमी की अस्मिता टॉफी चॉकलेट में तब्दील हुई तो उसकी भी नियति होगी या तो किसी दुकान के एयर टाइट मर्तबानों में सज जाना, या किसी धृष्ट अधीर लोलुप मुख में तिलक तिलक कर घुलते चले जाना। और घुल ही रही हैं लड़कियां। क्रैश डाइटिंग और दूसरे स्लिमिंग कोर्सेज का बढ़ता बाजार डराता है कि अपनी लंबाई चौड़ाई घटाते घटाते धरती की सतह से लुप्तोपमा, अलंकार की तरह गायब ही न हो जाएं कहीं ये बेचारियां। एमनिथिसियोसिंस जांचे इन्हें इस दुनिया में आने से रोक ही रही हैं। अतिशय धनलोलुपता की आँच कभी तंदूर में कभी चौक में जिंदा जलाकर मार ही रही है। ऊपर से अक्षत यौवना दिखने के यत्न में ये खाना पीना भी जो छोड़े तो इनका तो सचमुच खुदा ही मालिक। रूप यौवन और बाहरी चाकचिक्य पर जरूरत से ज्यादा बल एक तरह का पागलपन भी तो है। माँ बनने के बाद भी एक विशेष प्रकार के सांचे में फिट हो पाने की सुध अक्सर बनी रहती है। ऊपर से टेलीविजन के विज्ञापन बताते हैं कि सुपर मम्मियाँ तो वही हैं जो सुपर वायर्स हों। बच्चों को तरह तरह के उपहार खरीद कर दे सकने वाली साफ सुथरी, मुस्कुराती, सदाबहार। जो माँ इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती वह भी कोई माँ है? उसे तो कुछ भी कहा जा सकता है, कहीं भी लताड़ा जा सकता है। आंखें दिखाने पर बराबरी में आंखें भी नहीं निकालेगी वह, क्योंकि वह माँ है, पिता तो है नहीं। कमाती भी वो तो पिता से कम, और जो कमाती है उसे खर्च करने का अधिकार तो पिता को ही है, पिता ही है सुप्रीमो। तीसरी स्थिति ज़्यादा विषम है। उत्तर औद्योगिक भूमंडलीकृत समाज में लगातार निचले पायदानों पर औरतों को रोजगार सुलभ हो रहा है। अर्थशास्त्र जिसे फेमिनाइजेशन ऑफ सर्टेन जॉब सेगमेंट्स कहता है, उससे एक तरह के सारवाद के खतरे तो उभर ही रहे हैं। यह भी हो रहा है कि स्त्रियां पदानुक्रम में लगातार नीचे ही बैठी हुई छवि के साथ रूढ़ हो रही हैं, वर्चुअली चरणों में बैठी हुई। सेकेंडरी मार्केट में जब पदोन्नति के स्कोप बेहद कम होते हैं, स्त्रियाँ हर जगह मौजूद हैं। वह कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद वाली स्थिति में, पर ऊपर के पदों पर वही ढाक के 3 पात कुछ टोकन वीमेन, बड़े व्यापारी घरानों की साहबजादियाँ, जिन्हें गांव, देहात, कस्बे, शहर की साधारण स्त्रियों के तकलीफ दे जीवनचर्या की हल्की भी समझ नहीं होती, फिर उनसे प्रतिनिधित्व का सवाल सुलझेगा भी कैसे? पर जैसे बाढ़ की विभीषिका के साथ कुछ उपजाऊ मिट्टी भी किनारे आ लगती है, वो मंडलीकरण के मूलतः विनाशकारी वशीकरण मंत्र ने चाहते न चाहते स्त्रियों की अस्मिता का विकास भी थोड़ा कर डाला है। निचले पदों पर ही सही, स्त्रियां रोजगार तो पा रही हैं, तरह तरह की दुर्धर्ष स्थितियों से जूझने का आत्मविश्वास भी आ ही गया है, तरह तरह के एक्सपोजर से। यह ठीक है कि हम आज तक अतिरिक्तों में जी रहे हैं, लेकिन हमारा जो आने वाला कल है वो विशेषकर स्त्रियों के संदर्भ में सारे प्रचलित मिथक ऐसे तोड़ेगा जैसे कभी निराला के नायिका ने पत्थर तोड़े थे। यह कम बड़ा परिवर्तन नहीं है कि पढ़ी लिखी तेजस्वी स्त्रियां आज बहुधा अकेली रह जाती हैं और खासे ठस्से के साथ। गए वे दिन जब बड़ी उम्र की कुंवारियों, परित्यक्ताओं, विधवाओं और मां न बन पा सकने वाले के साथ डायनपने और कटखनी कटुता का मिथ जोड़ दिया जाता था। आज तो घर के पड़ोस के अनादृत बूढ़े और बच्चे बेसहारा स्त्रियाँ बतरस का सुख और थोड़ा चाय पानी भी न अकेली स्त्रियों की गृहस्थी में ही पाते हैं। खुद अपने पैरों पर ही ये खड़ी नहीं हुई, दूसरे के सिर साया करने की स्थिति में भी आ गई हैं। पक्के गृहस्थों के घर तो हम तो हमारे दो की संकीर्ण हृदय मतलब परस्ती ही ज़्यादा दिखती है, क्योंकि कम से कम बाकी सब हराम, काम से काम बाकी सब हराम वाला दर्शन उनका हो गया है। दूध वाले, सब्जी वाले, पंसारी, कबाड़ी, राह चलते परिजन पुरजन तक जहाँ घर के सदस्य ही हों, या अकेली स्त्रियों की गृहस्थी में आपको कहीं ज़्यादा दिखेगा। आधुनिकता के पहले दौर में संयुक्त परिवार टूटे टूटने ही थे। आज आर्थिक कारणों से और विश्वग्राम की अधुनातन स्थितियों के कारण भी न्यूक्लियर परिवार के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पति पत्नी और बच्चे अक्सर तीन दिशाओं में छिटक गए से देखते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा विस्फोट है। बच्चे छात्रावासों या डे केयर सेंटर्स में और अंततः सात समुंदर पार माँ बाप अलग अलग नौकरियों पर बहुधा अलग अलग शहरों में। इससे भी जीवन की जटिलताएँ बढ़ी हैं, मानसिक बीमारियां और स्वार्थपरता भी। हमने ऐशो आराम के साधन बढ़ा लिए हैं, पर कुल मिलाकर देखा जाए तो यह तकलीफ की बात है कि हम ऐसे समाज में जीने को अभिशप्त हैं जहां दूसरों का हक छीन कर सांस रहने में हमें शर्म नहीं आती। कभी मिनट दो मिनट के लिए आते भी है तो रेड क्रॉस में चंदा देकर, अनाथालयों, सुधार गृहों में आमदनी का थोड़ा हिस्सा डाइवर्ट कर, या थोड़ा बहुत तात्कालिक पीस मिल रिफॉर्म द्वारा परोपकारी पन्नालाल बनकर रहे सहे अपराध बोध से ही उभर लेते हैं हम। किसी का हक उसे कृपा भाव से दिलाना नवधनाढ्य वर्ग की वैनिटी को संतुष्ट रखने वाला ऐसा खतरनाक खेल है जो कम से कम होना नहीं चाहिए। हम किसी भी समुदाय, जाति, वर्ण, नस्ल, वर्ग की हों, हमारी समस्याओं के सूत्र कहीं तो जुड़ते हैं और हमें हर सामाजिक अन्याय के बिंदु पर सम्मिलित प्रतिकार की शक्ति यहीं से मिलती है। रत्नाकर डाकू की पत्नी या माँ की मनस्थिति में रहना तो खैर हमें बिल्कुल छोड़ देना होगा। हमारे घर में पैसा कहाँ से आता है, किस स्रोत से आता है, अतिरिक्त पैसा आता ही क्यों है, इन प्रश्नों पर तो हमें सजग तो रहना ही होगा। अपने रत्नाकर डाकुओं से यह तो हम नहीं ही कह सकते कि हमारा पेट पालना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम पैसे लूट कर लाओ या खसोट कर, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब हमें भरपूर है और क्यों नहीं होगा। आधे से ज़्यादा तो घर नहीं, कमाते भी हो तो पिता से कम, और जो कमाती हैं तो उसे खर्च करने का अधिकार तो पिता को ही है, पिता ही हैं सुप्रीमो। न हो किसी बड़ी क्रांति का स्कोप कहीं, लेकिन अपने छोटे छोटे जीवन वृत्तों में करती हैं, उसी मुलझ कर न रह जाएं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। मुक्ति और फंसाव के बीच का द्वैत समझ लेना जरूरी है। बहुत कठिन है डगर पनघट की रस्सी पर चलने की ठानी है तो एक एक कदम फूंक कर रखना तो होगा। देह पूंजी जरूर है, मगर क्रूर पूंजीवाद तो नहीं बन जाना हमें इस पूंजी के खेल में। घर में, स्कूल में पुराने लोगों के मुंह से एक कहावत हम सबने सुनी होगी, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। देह विमर्श, वेल्थ, हेल्थ और करेक्टर तीनों की बहुमूल्य धारणाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और तीनों की नई परिभाषाएं गढ़ता है, यह उसकी उपलब्धि भी है। सही समाधान वैश्वीकरण नहीं, सार्वभौमिकरण। औरत का बाजार या मंडी से रिश्ता हमेशा ही पेचीदा रहा है। पहले औरतें दिखती कम थीं, अब विश्व बाजार में हर जगह नज़र तो जरूर आ जाती हैं, मगर किस स्थिति में? जबरदस्ती हंसती रहने को मजबूर बारबी गुड़िया के रूप में, रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर परिचालक, अनस्किल्ड लेबर और अन्य मोटे मोटे छोटे मोटे पदों पर जहाँ बॉस गॉडफादर हृदय में दें या नौकरी या फिर पूरी अस्मिता ही सड़क पर जाने को तैयार खड़े हों, सुलग जाने को तैयार खड़े हों। आर्थिक संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार आज की स्थिति में रोका नहीं जा सकता, पर इसके साथ जुड़ी पैसों को खुदा मान लेने की मनोवृत्ति स्त्री का ही नहीं, गरीब और साधनहीन पुरुषों का भी पणीयकरण कर गई। एक जीता जागता व्यक्ति यूज एंड थ्रो की नियति झेलता सस्ता पण्य बन जाए इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। पैसे को खुदा मान लेने की यह मनोवृत्ति हिप हॉप कल्चर की नींव डालती गई। यहाँ सेक्स एक न्यूज़ बुलेटिन हो गया। ब्यूटी क्वींस कहलाने लगी, सांस्कृतिक राजदूत, और दुनिया हो गई एक ध्रुवी। दुनिया की दादागिरी, अमेरिका की दादागिरी बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। दक्षिणपंथी टुच्ची घेरेबंदियाँ, यह एक ओर औरतों के लिए ड्रेस कोड रचती है, दूसरी तरफ वर्चुअल सेक्स या इरोटो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो औरतों को एक बिकाऊ उपादान भर मानता है। इस नव उपनिवेशवाद द्वारा प्रायोजित ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेंस पिछड़े देशों की नन्नी गरीब बच्चियों का माल असबाब की तरह एड्स भी उन्नत देशों में निर्यात, ब्यूटी प्रेजेंट्री की अंतर्राष्ट्रीय स्पॉन्सरशिप, सौंदर्य मुद्दे के अक्ष पर अस्तित्व का बम और बोल बम के अक्ष पर पौरुष का ध्रुवीकरण, विश्व बाजार से जुड़े कई प्रश्न हैं जिनके 72 आयाम खोले जाने हैं। प्रभाखेतान ने इनमें से कुछ पर ध्यान दिया था, श्रम के स्त्रीकरण और यौन कर्म की कीमत पर विस्तार से चर्चा की थी, पर उनकी पुस्तक अन्यासनन्या का नाभिकीय केंद्र है भोग और भोगा जाना। इसकी कुछ सूचनाएं और टिप्पणियां दिलचस्प हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया एक ऐतिहासिक डिज्नीलैंड का निर्माण करती है, एक ओर भिन्नताओं को समाविष्ट करती है तो दूसरी ओर पहचान के आग्रह में ये भिन्नताएं और अधिक मुखर होती हैं। आगे उन्होंने फिल्मों के वर्ल्ड प्रीमियर को भूमंडलीकरण मेला कहा है। उदाहरण बताया कि कैसे हम स्थानीय से उठकर सीधे भूमंडलीय स्तर नापने का दावा करते हैं। यही मुझे यह सूचना भी मिली है कि वेनेटल नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी कपड़ों के शेड गार्ड में मुंबई के सूर्यास्त और अफ्रीकी सूर्यास्त का लाल रंग अलग अलग पहचानने का दावा करती है। 19वीं सदी में औद्योगिक विकास एवं औपनिवेशीकरण के कारण साधारण आदमी द्वारा लूट में मिले धन से, यानी नवधनाढ्य वर्ग द्वारा निर्मित हुए ये सार्वजनिक म्यूजियम, नाट्यशालाएं, ओपेरा हाउस, नाटक कंपनियां, उसके समानांतर आज 21वीं सदी में एक उच्च स्तरीय भूमंडलीय जन संस्कृति विकसित हुई है, जहां कोई भी अभिव्यक्ति और घटना आपके ड्राइंग रूम में हाजिर। खरीदो खरीदो की गुहार लगी है, मगर कितना खरीदो। स्वतंत्र बाजार की आड़ में हर देश नुकसान में है। अमेरिका का व्यापार घटा 400 अरब डॉलर है, और अकेले चीन को बकाया देना है लगभग 80 अरब डॉलर। और अंत में जब वे आती हैं स्त्री प्रश्न पर, तो नव स्त्रीवाद की आलोचना करते हुए ब्रांड की को स्त्री का चारण भात बताती हैं और जायजा देती हैं कि उस पूरी प्रक्रिया का, जिसमें उपभोक्ता को एक ऐसी पोटली पकड़ा दी जाती है जिसमें उसके सपने हैं, चाहत है, अपराध बोध और विवेकहीन कुंठाएं, और मीडिया इंटरनेट के बृहद स्तर पर उसे प्रेरित किया जाता है अच्छा उपभोक्ता पंती जाने को। यही एक तरह की चेतावनी है लुक बिफोर यू लीप वाली। आगे एक बहुत आबादी रणनीति की उड़न छू चर्चा भर है, पर क्या होंगे इस रणनीति के मुद्दे और भी कैसे क्रियान्वित होंगे, इस तरह के कोई फेमिनिस्ट ऑन्टोलॉजी उभर कर नहीं आते। स्त्रीवादी अर्थशास्त्र और संस्कृति कर्म का मिला जुला ब्लू प्रिंट बने वो मंडलीय स्तर पर स्त्रीवादी युवनों गठित हो, तब हो यह सांस्कृतिक प्रतिकार पूरा, तब हो यह बड़ी लाल किताब पूरी जो दुनिया की सब स्त्रियाँ मिलकर लिख रही हैं, धरती सब कागज गौरव, लेखन सब बनराई की तर्ज पर। ग्लोबल गवर्नेंस के प्रस्तावों और वर्ल्ड सोशल फोरम के अन्य प्रस्तावों के तहत इमोशनल इंटेलिजेंस, ऊर्जा संतुलन और शक्ति समन्वय का प्रस्ताव भी इसी स्त्री आंदोलन का एक विचारणीय प्रस्ताव है। महिला संगठनों के एक विशेष सेक्टर की भी बात चलाई जा रही है। जाहिर है कि स्त्रियों के विकास के अंतर्गत उनके आंचल के नीचे पलने वाले बच्चों और वृद्धों का विकास भी अंतर्भुक्त होगा, जो किसी भी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। आधुनिक दौर में प्रस्तावित मैन ऑफ रीजन से उम्मीद की जाती थी कि गधे के सिंह की तरह गायब हो उसके सर से कल्पना और अंतःप्रज्ञा, फंतासियां, स्वप्न और स्मृतियां। इस यंत्रीकरण की प्रक्रिया का सहज समाधान ग्लोबल स्तर के स्त्री संगठनों द्वारा संभव है। इसकी कहीं कोई झलक भी किताब भी नहीं है, न ही इस बड़े प्रश्न की चर्चा भूले से भी कहीं हुई है कि सार्वभौमिकता राष्ट्रवाद, नस्लवाद, लिंगवाद की प्रतिरोधी होती हो तो है, पर इसके इस प्रतिरोध और अंतर्गत मनुष्य की स्नेह, सुरक्षा, धर्मी और गैर बौद्धिक जरूरतों का दमन हीनतर और विकृत घेरेबंदियां भी पैदा कर सकता है। आधुनिकता और प्रबोधन के प्रमुख उद्देश्य हैं स्वायत्त व्यक्ति और तर्कशीलता के उत्थान पर भूमंडलीकरण द्वारा परोक्ष तौर पर सुलगा दी गई ये विकृत घेरेबंदियां स्वायत्तता और तर्कशीलता दोनों का राम नाम सत कर डालती हैं। यहीं से शुरू होता है इसके अंतर्विरोधों का सिलसिला, जो स्त्री आंदोलन द्वारा प्रायोजित ईक्यू संतुलन से ही संभव है। एक स्त्री आंदोलन ही है जो ठीक से समझता है कि वैश्वीकरण का सही समाधान सार्वभौमिकरण है। वैश्वीकरण एक ध्रुवीय विश्व का उत्पाद है। इसका दर्शन संक्षेप में यह है कि एक दर्शन, एक बिंब, एक विश्व दृष्टि दुनिया के विशिष्ट कोणों से उठे और पूरी दुनिया पर छा जाए, जस का तस। अस्मिता आंदोलन द्वारा प्रस्तावित सार्वभौमिकरण मानता है कि दुनिया के हर कोने से अपना विशिष्ट अनुभव खंड हो और वह क्षण छनाकर मानव मात्र का उभयनिष्ठ अनुभव बने। कोई किसी पर दादागिरी न छाटे, जो हो साझा हो, पर पदानुक्रम न हो कायम और चीजें परिवर्तन को प्रस्तुत रहें, संवाद सबका सबसे हो। मुश्किल यही तो घिराई है कि अनुभव संचरित नहीं हो रहे, संचरण ही एकमात्र अनुभूति रह गई है। इसका खुशनुमा व्यतिक्रम स्त्री आंदोलन ही घटित कर रहा है। क्यूबा से अभी अभी प्रकाशित विट्रेल नामक फेमिनिस्ट जर्नल दक्षिण एशिया का बौतिक आंदोलन कैनोलियन और कोलोनियल दोनों पर एक सुखद प्रतिघात कैसे घटित कर रहा है, कुछ ऐसी चर्चाएं भी पुस्तक में अपेक्षित थी। कोलोनियन और कैनोनिकल दोनों पर पहला प्रतिघात स्त्री आंदोलन ने किया, पर यह प्रतिघात चाकू या डंडे का प्रतिघात नहीं, यह प्रतिघात है लकड़ी के उस लट्ठे का जिससे पीट पीट कर औरतें रजाई की खोल, पुराने स्वेटर, चादरें, पोछे की कपड़े वगैरह का जिद्दी मैल आज भी निकालती हैं। देश के एक बड़े हिस्से में वैभवशाली आंदोलन के बाद स्त्री आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है जिसमें एक बूंद भी रक्तपात नहीं हुआ। पटखनियाँ भी दी गई हैं तो जैसे कपड़ों को दी जाती है, चीकट पूर्वग्रह को धो डालने की खातिर। अगर जर्नल वैश्विक स्तर पर इसके वैकल्पिक विजन के भूरे दे पाती तो यह मुकम्मल जर्नल होती। पर खैर, कहीं कोई पत्ता खड़का जड़ शांति से तो अच्छा ही है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, दुनिया के आर्थिक विकास में स्त्रियों की भागीदारी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सद्य प्रकाशित दो रपटे इस बात पर सजग लक्ष्य साक्ष्य वहन करती हैं कि स्त्री छू दे तो मिट्टी भी सोना हो जाए। स्त्रियों की भागीदारी जहां भी रही है, उन संस्थानों का कुल उत्पाद पहले से कई गुना बढ़ा है। UNPF की रपट रीचिंग कॉमन ग्राउंड कल्चर जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स इसकी पुष्टि में कई आंकड़े देती हुई अंततः इस बात पर अफसोस जताती है कि दुनिया के 1 बिलियन लोगों में 60% स्त्रियां हैं तो 66% वयस्क निरक्षर भी, जिनका स्कूल असमय छुड़ा दिया गया या उन ड्रॉप आउट्स में भी 70% लड़कियां ही हैं। WEF का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 130 विकासशील देशों के बीच 113वें स्थान पर भारत को रखता है। 3 उपश्रेणियों में तो भारत का स्थान और भी नीचा है। ये श्रेणियां हैं आर्थिक सहभागिता और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और बचाव, किंतु राजनीतिक संबलन की 4थी श्रेणी में भारतीय महिलाएं ऊपर हैं। अन्य भूमंडलीय चुनौतियों की तरह लिंग समदर्शिता भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर खर्च न के बराबर हो रहा है। सबसे शोचनीय हालत तो जच्चा घरों की है। दुनिया में 66% बच्चे प्रशिक्षित दाइयों या डॉक्टरों की निगरानी में पैदा होते हैं, भारत में सिर्फ 47%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक रिपोर्ट यह भी है कि बालिका भ्रूण हत्या की दर पढ़े लिखे समृद्ध नागर समाज और न्यून सेक्स अनुपात वाले राज्यों में ज्यादा है। गांव में तो सुरक्षित और साफ सुथरे प्रसव की व्यवस्था और सामान्य पोषण का अभाव ही जच्चा बच्चा दोनों को असमय काल कवलित कर लेता है। बचपन में हम चुड़ैलों के किस्से सुना करते थे कि जचकी के दौरान मरने वाली स्त्रियां चुड़ैल बन जाती हैं। उनके पांव पंजे पीछे की ओर होते हैं और गर्मी की रातों में घर की छत पर या बरामदे पर फट्टों में मुसहरी लगाकर जो सोते हैं उन्हें वे मुसहरी के पार से झांक झांक कर देखती हैं कि कहां गया उनका वह बच्चा, किस मुसहरी में सोया है, कोई उसे तंग तो नहीं कर रहा। चूंकि वे अपने बच्चे का भी चेहरा ठीक से नहीं जानती, कोई भी बच्चा कहीं तंग होता है तो वे तंग करने वाले को कच्चा ही चबा जाती है। स्कूल के मरखंड मसाबों और सख्त बापों से वे कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि गांव के रिश्ते में उनके जेठ लगते हैं, यानी कि उतनी मारपीट तो बेचारे बच्चों की मन भाव न भगवान बचा सकते हैं न चुड़ैल। लोक मनीषा जहां से ये किस्से मुकुलित होते हैं, बच्चों की कुछ मारपीट तो जायज समझती है पर चुड़ैलों को भी पोएटिक जस्टिस दिलाकर कम से कम न्याय की देवियां बताना वह जरूरी नहीं समझती। इसको कहते हैं अभ्यांतिकरण। किसी को इतना मारो कि उसकी चमड़ी ही सख्त हो जाए, चोट लगनी ही बंद हो जाए, थोड़ा मारा रोए, बहुत मारा रोए सोए। इसी नींद से जगाता है यह स्त्री आंदोलन। यह चुड़ैल को उल्टे पाँव की सही व्याख्या करता है। उल्टे पंजे वाला व्यक्ति पीछे की ओर ही चलेगा, यानी कि अतीत जीवी होगा। अतीत में ही कहीं अटके होंगे, उसके प्राण अटकेंगे कैसे नहीं। इतना गहरा सदमा जो कीलित है उस काले अतीत में। कैसे समाज में वह जी रही थी कि जिंदगी का सबसे अधिक खूबसूरत जो दिन होना था, जिस दिन उसकी गोंद हरी होनी थी, उसी दिन उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि साफ सुथरे सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। सिर्फ अपनी गोंद हरी करने का या अपना जीवन ही हरा भरा करने की स्त्रियां नहीं सोचती, धरती की गोंद भी हरी भरी रखने को उनको हमेशा चिंता रही है। स्त्री विकास को निवेदित ज्यादातर संस्थान पर्यावरण प्रबंधन को मूल मुद्दा मानते हैं। भोपाल और चेर्नोबिल विपत्तियां, मिट्टी, हवा और पानी पर बायोस्फेरिक दबाव, ग्रीन हाउस प्रभावों से मुरझाती फसलें, ग्लोबल वार्मिंग और अन्य संबंध विषय 1980 के बाद से स्त्रियों की सोच का मुख्य मुद्दा रहा है। चारा, ईंधन और पानी की मूलभूत सुविधाओं से विरत ग्रामीण और पर्वतीय स्त्री समुदाय सिर्फ इन्हीं की खातिर नहीं, शराबबंदी, शिक्षण प्रशिक्षण, परिवार नियोजन संसाधनों पर स्त्रियों के प्रभुत्व की मांग भी उठाने लगा है। स्त्री हो या धरती, उससे गैर जिम्मेदार दुर्व्यवहार तुरंत बंद हो या जरूरी है। उड़ीसा के समुद्र तटीय गांवों में धरती भी महीने के 4 दिन रजस्वला घोषित करके आराम करने को छोड़ दी जाती है। धरती और स्त्री का धीरज, धरती का गर्व आदि संदर्भ भी धरती और स्त्री को एकात्म करके देखते हैं। एक लोकगीत कहता है, स्त्री का बलात्कार धरती का बलात्कार है और बालिका का बलात्कार ब्रह्मांड का। पारंपरिक मार्क्सवाद से स्त्रियों को एक शिकवा यह भी है कि वह आधुनिकता को स्थानीय संस्कृतियों की छब में नहीं ढालता। प्रकृति के अलग अलग रंगों में उसका संवाद ही नहीं है। पश्चिमी सभ्यता के आलोक में पूरी दुनिया को देखना बहुत न्यायसम्मत तो नहीं। धरती के रंग की तरह आधुनिकता के भी कई रंग हैं। कम से कम स्त्री दृष्टि यह पहचानती है, क्योंकि धरती के अलग अलग रंगों से उसका साबका पड़ता है। और जैन पारपोर्ट जैसे स्त्रियों की पावर ऑफ परस्यूएशन, डिस्कशन एंड इंक्लूजन कहती हैं, हट करने, आश्वस्त करने और पीछे लगकर बतियाने, चर्चा करने और सबके सुख दुख समेट लेने की उनकी उद्धुर शक्ति ही आधुनिकता के उत्तर विकासवादी चरण को वैकल्पिक जीवन पद्धतियों से समृद्ध करेगी, ऐसा लगता है। कई ऐसे अलग थलग पर्वतीय प्रदेश हैं जहां स्त्रियां आधुनिकता का नया धुर देसी सा संस्करण मॉडल के रूप में लिए खड़े। प्रसिद्ध स्त्रीवादी कार्यकर्ता नारवर्ग हाडगे ने विमेंस अलायंस ऑफ लद्दाख के सौजन्य से कई ऐसे रियलिटी टूर प्रायोजित किए जिसने आधुनिकता के चाकचिक्य का विभ्रम ढूंढा और धरती, परिवार तथा समुदाय की आदि अभिभावक शक्ति के रूप में स्त्रियों की अनमोल भूमिका रेखांकित हुई। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर वैधानिक श्रम मंडियों में स्त्रियों की डगमग स्थिति दुर्गति के दौर तक पहुंच गई। भूमंडलीकरण के बाद जब राष्ट्रीय बाजारों से जुड़े छोटे और मध्य वित्तीय विनियोग अचानक मुंह के बल गिर पड़े, देह का धंधा और दूसरे घरों का चौका बर्तन, ब्यूटी पार्लरों और हेल्थ पार्लरों में मालिश करके जीवन यापन करती स्त्रियों को मुंबई में शिवसेना के लोग फोड़ने लगे, दिल्ली में अन्य पार्टियों के लोग पर किसी राजनीतिक पार्टी की इत्ता सत्ता इनको सामान्य जीवन की वे मूलभूत सुविधाएं जुटाने का विशेष उपक्रम करती नजर नहीं आई, जिनकी अपेक्षा किसी भी प्रजातंत्र का संविधान जगाता है। जिसमें फरोसी का प्रतिशत निम्न मध्यवर्गीय लड़कियों भूमंडलीकरण के बाद काफी बढ़ गया है, क्योंकि यौन पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और काला धन भी राजस्थान जैसे पर्यटक बहुल स्थलों में दूर दराज की जगहों और दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों से भी इंटर में पढ़ती है कई तरह के पत्राचार कोर्स करती मामूली पढ़ी लिखी चुस्त दुरुस्त लड़कियां महीने दो महीने की जिस फरोशी के लिए आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स की यह नई श्रेणी है। माता पिता से ये कहकर निकलती हैं कि उन्हें नौकरी मिल गई है और साल में कुछ महीने टूर में बिताकर सर्वेक्षण जुटाने हैं, उसी की उन्हें एक मोटी तनख्वाह मिलेगी। मोटी तनख्वाह उन्हें मिलती भी है, किंतु उन पर्यटकों या धन्ना सेठों से जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों फर्मों से कुछ दिन की छुट्टी पर यहाँ आते हैं। जयपुर पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार संभ्रांत परिवारों के नव युवक युवतियाँ भी मात्र किक के लिए इस कॉर्पोरेट सेक्स का हिस्सा बन जाते हैं। व्यापारिक संस्थानों के समानांतर चल रहे इन सेक्स रैकेटों में कई ऐसी घरेलू महिलाएं भी शामिल हैं जिनके मन में अपने हिंसक पतियों के प्रति किसी न किसी तरह का आक्रोश है। मारपीट, गाली गलौज झेलती जब ये थक जाती हैं, एक सूक्ष्म प्रतिशोध की मुद्रा में और स्वतंत्र आर्थिक अंतर व्यवस्था खड़ी करने का सपना लिए वे दोपहर में उन दलालों के साथ शॉपिंग के नाम पर निकल पड़ती हैं जिनके पास पहले से ही घर गृहस्थी से असंतुष्ट महिलाओं की सूची होती है। डांस पार्टियों के बहाने जिस्मों की नुमाइश होती है और युवती की देह यष्टि और सेक्स अपील के अनुसार उसकी दर या तनख्वाह तय होती है। एक ऐसी युवती ने बातचीत के दौरान बताया कि उसका शरीर उसका अपना धन है, वह उसका चाहे जो उपयोग करे। दान, भोग और नाश, धन की तो तीन ही गतियाँ होती हैं, नाश से बेहतर है दान और भोग। बड़ी उम्र तक अकेला रहना होता है। वातावरण में तरह तरह के स्नायविक तनाव जगाने वाले स्पंदन बिखरे पड़े हैं। दवा की दुकानों पर कंडोम मिलता है। सुरक्षित स्थान की व्यवस्था उन्हें खुद नहीं करनी पड़ती, उनका वह परदेशी प्रेमी करता है जिसके लिए पैसा हाथ का मैल है। घर के लोगों को भी शिकवा क्यों कर होनी चाहिए, उनको तो आर्थिक मदद ही हो जाती है और 10 कामों की तरह यह भी एक काम है। रहा पजेसू इंस्टिंक्ट टैकल करने का सवाल, तो इसका हम ध्यान रखते हैं कि उन्हें पता न चले हम कहाँ जाती हैं। अपराध बोध भला क्यों होगा, पतियों का यौन जीवन भी हम संतुष्ट रखती हैं। फिर वो ही कौन राम जी का अवतार है कि हम सीता सावित्री होने का ढोंग करती रहें। 4 दिन की चांदनी है जवानी, रोते झिंकते बिताने में अच्छा है से अच्छा है मौज मस्ती में बिताना, लेकिन सावधानी बरतते हुए, क्योंकि समाज तो अभी तक पिछड़ा है। समय के साथ व्यक्ति की मानसिकता इतनी जल्दी बदलती है समाज की नहीं बदल पाती। व्यक्ति समाज से हमेशा 10 कदम आगे चलता है। तर्क का जो स्तर है उससे कोई भी समझ लेगा कि लड़की मामूली पढ़ी लिखी नहीं, अच्छी पढ़ी लिखी है। कॉर्पोरेट सेक्स में चुस्त चुटीली बातें कर सकने वालियों की दर ज़्यादा है। इनके ग्राहक ग्राहक नहीं कहलाते, क्लाइंट कहलाते हैं। और चूंकि वे भी पढ़े लिखे तबके से आते हैं, कुछ घंटों की डेटिंग का मजा शिष्ट व्यवहार से बरकरार रखने का गुर उनको आता है। कोमल व्यवहार के आकांक्षी स्त्रियों में वे ये भ्रम भी पैदा करते हैं कि अगर उनसे शादी हो पाती तो वे उन्हें बहुत अच्छी तरह रखते। इस तरह आह और वाह की कश्तियों पर सवार भी अपने बेशकीमती घंटे बिताते हैं। और वो जो एक बहुत चालू सा मुहावरा है, पार्टिंग एज फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह अभिनीत होता है। मैंने उत्सुकतावश से पूछा कि दोस्ती तो बहुत बड़ा जज्बा होता है, सुख और दुख दोनों में साथ खड़ा होने का जज्बा। तो वह बोली, मैडम मेरे पति जब अस्पताल में भर्ती थे वह लगातार मेरे पीछे खड़ा रहा, हर तरह से उसने मेरी मदद की, मुझसे भी जो बन पाता है मैं उसके लिए करती हूँ। इस तरह की और कितने जटिल केसों से हम गाहे बगाहे गुजरते हैं जो हमें यह सोचने में विवश करते हैं कि एकनिष्ठता एक बड़ा भाव तो है। एकनिष्ठ रिश्ते अधिक इंटेंस हो सकते हैं यदि दोनों प्राणियों के मूल तत्व एक हो, कंपैटिबल हो दोनों, अन्यथा जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए का दर्शन स्त्रियों में भी परवान चढ़ रहा है। पुरुषों में तो यह हरदम से था। बाजारवादी ताकतें इसी ढंग से हमें संबलित कर रही हैं। छोटे बड़े कई रंगीन झूठ क्रिस्टल के महंगे खिलौनों की तरह हर ड्राइंग रूम में सजे हैं। क्या अपने बच्चों के लिए भी ऐसा जीवन चाहते हैं हम? सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है, और ताकत ये कि झूठ भी खुद को सच्चाई प्रमाणित करना चाहता है। इसी के समानांतर एक वर्ग ऐसी लड़कियों का भी है जो सौंदर्य के बाजारों निकष पर खरी नहीं उतरती। दुनिया के सारी वाइटनिंग क्रीम और रिवाइटलाइजिंग शैम्पू, कॉन्टैक्ट लेंस और वेट लॉस सेंटर, एजुकेशन लोन, कैट और मैट और सैट और जी मैट, पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम कोचिंग सेंटर जिन्हें मुक्ति की अलग अलग राहें दिखाते रहते हैं, बीच बीच में उन्हें मुक्ति के रास्ते दिखाते हैं। कई आवधिक पाठ्यक्रम, योग, रेकी, विपश्यना, सोका, गकाई, आर्ट ऑफ लिविंग, तरह तरह के अन्य ध्यान केंद्र, दुनिया के सारी निबंध प्रतियोगिताएं और वाद विवाद प्रतियोगिताएं उनके लिए हैं। वे विवाह करना भी नहीं चाहती क्योंकि उन्हें ढोल डंगरों की तरह दिखाया जाना, टूट होकर मोल तोल कर छांटा जाना बिल्कुल पसंद नहीं। उनके स्वाभिमान को यह बात खटकती है कि उन्हें पिता और भ्राता संपत्ति में हिस्सा नहीं दे कर दहेज का हर जाना दें जैसे कि लंगड़ा घोड़ा हो, और जब से ससुराल जाए तो अलग लात खाए कि यह दिया वह नहीं दिया। विवाह को गैर रुमानी पछड़ा बनाने में लड़की दिखाई और दहेज दोनों का इतना अवदान है कि गंभीर पढ़ी लिखी लड़कियों का भी उससे जीव चट गया है। वे पढ़ लिखकर अपने पाँव पर खड़ी भी हुई तो विवाह नहीं करना चाहती, वहाँ उन्हें फरे भी फरे दिखता है। शारीरिक सौंदर्य को जरूरत से ज़्यादा तूल देने वाला ढोंग और दिखावा, जहाँ ढोंग और दिखावा दुराव छिपाव नहीं वहाँ जीवन के को नर्क बनाने वाले दूसरे तत्व हैं। संबंधों की टुच्ची राजनीतियाँ, कलह, क्रोध, हिंसा, जीवन के किसी मोड़ पर कहीं कोई मिल गया तो कुछ दिनों का सुखद सहजीवन उनके स्वप्न का एक हिस्सा भी है, किंतु गाजे बाजे वाला विवाह नहीं। इसी तरह कि कुछ लड़कियां समलैंगिक सहचर में विश्वास करती हैं, लेकिन ज़्यादातर सामाजिक हित के बृहत्तर सरोकारों में अपना जीवन अकेले ही काट लेती है। वर्किंग वीमेंस हॉस्टल ऐसे साधु सदृश लड़कियों से भरे पड़े हैं जहाँ छोटी मोटी नौकरियाँ करती हुई लड़कियाँ शाम से अकेली ही जीती हैं और जितना बन पड़ा उतना लोगों के काम भी आते हैं। आर्थिक संबलन का भी एक गौरतलब पक्ष है। एक वैयक्तिक सर्वेक्षण के आधार पर मैंने यह भी पता किया कि चूंकि ये बराबर बाखबर लड़कियां होती हैं जो अखबार ठीक से पढ़ने वाली आदर्श का तबोताब इनमें बहुत होता है और जल्दी ये कोई भी ऐसा काम नहीं करती जो इनके अपने मानदंडों को से इनके गिराए। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि हॉस्टल का एक रस खाना ये खा लेती हैं पर बगल के मैकडोनाल्ड और हैमबर्गरों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। 1994 में पेप्सी फूड लिमिटेड ने भारत में 60 रेस्तरा खोले, 30 केंटुकी फ्राइड चिकन केंद्र और 30 पिज्जा हट। प्रोसेस्ड मटन और चिकन को अमेरिकी सीनेट कैंसर के उस प्रकार का मान्य स्रोत घोषित कर चुकी थी जिससे अमेरिकी हर 7 सेकंड पर ग्रस्त होते हैं। वेंकीज नाम की भारतीय फर्म ने फ्रोजन चिकन मंगाए जाने लगे जिन्हें तरह तरह की एंटीबायोटिक्स, सल्फर ड्रग, हार्मोन ड्राई और नेट्रोफ्यूरन देकर पाला जाता था। कई मुर्गों को ल्यूकोसिस नामक कैंसर भी हो चुका होता था और सेल्मालिसासिस नामक असाध्य रोग जिसके कीटाणु साधारण ढंग की उबाल में मरते नहीं फिर भी वे काटे और कूटे जाते थे डब्बा बंद होने की खातिर। ये लाइसेंस पाने के पहले KFC और पिज्जा हटों ने रोजगार मुहैया कराने का वादा किया था, किंतु पर्यावरण मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार अल कबीर ने 3 लाख लोगों की छटैया की और सिर्फ 300 लोगों को 500 से 2000 रुपये तक की मासिक आय पर नौकरी दी। KFC और पिज्जा हट से कॉन्ट्रैक्ट पाने के बाद वेंकी का मशीनीकरण इतना बढ़ा है कि हर केंद्र सिर्फ एक व्यक्ति के आश्रय चल जाए। मुर्गों की बेहिसाब बढ़ोतरी जमीन और जल की अशुद्धि से भी लगातार अपना योगदान दे रही है। लाल मांस, सफ़ेद मांस, अंडे आदि के प्रति पाउंड उत्पाद पर जमीन की 5 पाउंड ऊपरी मिट्टी अविस्थापनीय उर्वर मिट्टी नष्ट होती है और पानी प्रति पशु 130 गैलन जाता है जो किसी पूरे परिवार के प्रतिदिन के पानी इनटेक से 10 गुना ज़्यादा है। स्त्रीवादी तेवर की लड़कियाँ ये सारे तथ्य जानती हैं और प्रकृति और दूसरी स्त्रियों के प्रति उनका रवैया इसलिए सहानुभूतिशील बनापे वाला होता है क्योंकि उन्हें जन्नत की हकीकत पता है और आटे दाल का भाव भी। ज्ञान संज्ञान देता है और ज्ञान संज्ञान ही अनुभूति पुष्ट होकर इस बेहतर प्रज्ञा में विकीर्ण होता है जिसे विमर्श या दर्शन कहते हैं। स्त्री प्रज्ञा लोक प्रज्ञा के रूप में लोक साहित्य में सदा से टिमकती रही है और इसे विशेष मान और गौरव पिछली शताब्दी की उत्तरार्ध में मिल पाया है। कुल मिलाकर यह तो शुरुआत ही है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। विज्ञापन विज्ञान ने कुछ शब्द नए गढ़े हैं, उनमें एक है चमत्कार। एक प्रसिद्ध विज्ञापन साबुन पदार्थ चमत्कार की चमत्कारपूर्ण चर्चा के पहले एक स्त्री के मन में दूसरी स्त्री के लिए एशिया की हल्की सी कौंध जगाता हुआ कहता है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। साड़ी का साफ होना किसी चीज़ का साफ सुथरा होना तो मूल्य हो सकता है, पर उसे दूसरों की साड़ी या किसी पण्य से अधिक या उसके बराबर सफ़ेद या जगमग या सुंदर कर लेने की होड़ एक वाहियात बात है। सौंदर्य किसी का मुखापेक्षी नहीं होता, ऊपरी कलेवर के किसी लटके झटके का मुखापेक्षी तो और नहीं। हर व्यक्ति हर स्त्री उसका छोटा बड़ा संसार सजाने वाली हर वस्तु अपने ढंग से सुंदर हो सकती है। दूसरों का सौंदर्य सराहना भी एक मूल्य हो सकता है। यदि किसी ने बहुत मेहनत और मनोयोग से कोई काम किया हो तो उसके लिए संसार के दुःशब्द कह देना भी एक मूल्य हो सकता है, प्रसंगत है। उसकी तुलना अपने काम या अपनी चीज से करते हुए मन में कोई ग्रंथि पाल लेना या मान लेना कि उस अतिरिक्त चमकार के पीछे बाजार से खरीदी जा सकने वाली वस्तु का पराक्रम मौजूद है। पहली बात तो यह कि बाहरी चाकचिक या लगटक बढ़ाने वाली किसी चीज के पा जाते हैं। चीज की तो छोड़िए, यदि किसी शक्तिमंत या साधना संपन्न व्यक्ति के साथ चमकार वाले व्यक्ति के साथ आपका उठना बैठना भी होता है तो उसका लाभ आपको मिल जाता है, जिसे अंग्रेजी की दुनिया एक अरसे से रिफ्लेक्टेड ग्लोरी कहती आ रही है, परावर्तित प्रभा मंडल। इसका काम चलाऊ अनुवाद हो सकता है, पर हमारी भाषा की बनक ऐसी है कि ऐसी भारी भरकम आयातित अवधारणाएं उसे हजम ही नहीं होती, गले में अटक सी गई जान पड़ती है। एक अच्छी खासी सामासिक संस्कृति का आईना रही हमारी यह भाषा एक अश्लील किस्म के व्यक्तिवादी रोने गाने का प्रतिबिंबन हो जो आज करती दिखाई देती है, उसके मूल कारणों पर विचार करना क्या जरूरी नहीं। मेरे पिता मुझे रोज रात कहानी सुनाकर सुलाते थे। ऋण की चमकार वाला विज्ञापन सुनकर मुझे अचानक याद आई दो बहनों की कथा। लोक कथाओं के अधिकांश बहनों की तरह एक दुखिया थी, एक सुखिया। एक का ब्याह गरीब किसान से हुआ था, दूसरी का धनी सामंत से। एक बार धनी सामंत के घर भोज हुआ। घर के सारे लोग जुटे, पर छोटी बहन को निमंत्रण ही नहीं। सास ननद ने ताना मारा तो बेचारी बिन बुलाए ही अपनी बहन के घर की ओर चली, मन को यह समझाती हुई कि अपनों को निमंत्रण किया, दीदी ने यही सोचा होगा कि यह अपनी है, चूल्हे चौके में मदद के लिए खुद ही आ जाएगी। अपनों के सहयोग के बगैर कोई यज्ञ थोड़े ही होता है। यही सब सोचती विचारती मन में तरह तरह के ख्वाब ख्याल से जाती बेचारी दीदी के दरवाजे पहुंची। कपड़े लत्ते लगदक नहीं थे, चप्पलें टूटी थी, देह पर गाने के नाम पर एक सूत नहीं था। देरी पर ही दीदी से टकराई तो दीदी ने हल्के से मुंह फेरा, सोचने लगी कि इस भ्रांत समाज में इस कंगली का परिचय दूं ही तो क्या। बात टालने के लिए से कहा, जाओ जाकर भंडारा संभालो, लोग समझे काम धाम करने वाली उठा मारी होगी। किसी ने परिचय भी नहीं पूछा। छोटी बहन सारा समय नौकरों के बीच खड़ती रही। रात को जब भोज निपटा, किसी ने उसे खाने को भी नहीं पूछा और अंधेरे में रास्ता टटोलती वह रात ही रात अपने गाँव लौट गई। पति चिंतित भाव से बाहर ही टहल रहा था, उसे देखते ही उसे लिपट कर वह रो पड़ी। पति पति ही था, बिना बताए सब कुछ समझ गया। उसने उसके उलझे पुलझे बाल सुलझाए, हाथ पांव धुलवाए, खुद पका कुछ खिलाया और उसे गुदड़ी में ढक कर रात भर सोचता रहा कि कैसे इस मुफलिसी से निपटे। संयोग की बात, अगले दिन अपना खेत तामते हुए उसे मिला बाप दादों का गड़ा हुआ धन और रातों रात वे अमीर हो गए। रातों रात बहन के अमीर होने के चर्चे बड़ी बहन के कान में पड़े तो उसने सोचा कि बिगड़ी बनाने का यह वक्त अच्छा है। बचपन की कुछ मीठी यादें तभी तो उसके मन में कौंधी, कुछ लोगों का लेटेंट पीरियड हो हाई होता है, यादें भी उनके मन में तभी कोती है जब कौंधनी चाहिए। वैसे मुन्नी मारे पड़ी रहती है गुम अंधेरे में। एक बार उसने छोटी बहन और बहनोई के सम्मान में एक अलग भोज दिया, हर कारे भिजवाए, पालकी भिजवाई और इस बार जो छोटी बहन आई तो खूब सारे गाने और चमकार वाले लगदग कपड़े पहनकर खूब आवभगत हुई। शहनाइयाँ गुजी, लेकिन जब खाना परोसा गया एक अजब घटना घटी। छोटी बहन ने लड्डू झुमके से सटा कर कहा, ले झुमके ये जल्दी खा ले। फिर कंगन से बनारसी साड़ी के पल्लू से दूसरे पदार्थ सटा सटा कर वह खाद्य पदार्थ वापस थाल में रखती गई। बड़ी बहन ने समझा कि धनागम की खुशी में बहन या मेरी पागल हो गई है। छोटी बहन ने उसकी सोच भापी और हंसकर कहा, यह सारा आयोजन दीदी है तो इन्हीं कपड़े गहनों की खातिर, और मुझमें भला क्या बदला है, मैं तो वही जो थी। निसार को सार समझने की भूल तथा कथित साधु महात्मा भी करते हैं, तभी उनके आश्रमों में आधुनिक महलों का चाकचक्य होता है। चंदे की रसीदे लिए उनके चेले लोगों के पीछे भागा करते हैं और यह काफी हास्यास्पद सी स्थिति है जिसे निमटने में स्त्रियां महत्वपूर्ण पहल कर सकती हैं। काला धन कमाने वाले पकड़े जाने पर अक्सर यह कहकर अपनी सफाई देते हैं कि ऋण की चमकार सी सफाई की पत्नी की ऐशणाएं ले डूबी, वरना हम भी आदमी थे ढंग के। इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया। इश्क के बारे में मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि इश्क निकम्मा तो कर सकता है पर बेईमान नहीं बना सकता। अगर इश्क सच्चा है तो हमारे नैतिक और सामाजिक सरोकार और गहरे करता है। अपने प्रिय की आंखों से न गिर जाए यह चिंता एक वाजिब चिंता है जो हर वक्त आदमी को सतर्क रखती है कि पहले से भी हम कुछ ऐसा न कर बैठे जो चुनरी में दाग लगा दें। इश्क में ही तो होता ही ऐसा है कि एक व्यक्ति को बहाने आप सारी दुनिया से प्यार कर बैठते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के दम से कितनी सुहावनी और प्यारी लगने लगती है दुनिया, उसे और प्यारा और बेहतर बनाने का मन भी होने लगता है। झूठ है यह कि औरतें जो खुद किसी पद पर कभी घुस लेती नहीं पाई जाती, अपने पतियों भाइयों बेटों के बेईमानी का पैसा कमा लाने की उकसाती हैं। टूट टाट पर टपकत खटियों टूट की स्थिति में भी स्थितियाँ अधीर नहीं होती। स्कूल के कोर्स में भारतीय हिंदू का सत्य हरिश्चंद्र नाटक था। शब्या के बहाने पूरी स्त्री जाति का मन टटोलने वाली ये पंक्तियाँ 12-13 वर्ष की उम्र में पढ़ी होंगी और अब तक याद है, इसलिए कि ये पंक्तियाँ हमारे अंतर्मन के एक बड़े सच का प्रतिनिधित्व करती हैं। औरतें बेचारी तो प्यार की ऐसी भूखी होती हैं कि दो बोल प्यार के बोल कर उन्हें लोग उन्हें जिंदगी भर नचा लेते हैं। गाड़ी मोटर बंगला साड़ी आदि खेल खिलौनों पर ध्यान उसी का जाता है जिसने प्रेम का स्वाद भी नहीं चखा। एक अदम्य सी अतृप्ति उसके चित्त को व्याप जाती है और वह इन खेल खिलौनों में सुख ढूंढने का मूर्ख प्रयास करता रहता है। दलित को खुश रखने को गालिब का ख्याल बिल्कुल अच्छा नहीं है कि प्रेम नहीं मिलता तो बेकार की चीज़ों की चमकार की चिंता में आप दिन रात घुला करें। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहत ये और भी है वसल की राहत के सिवा। पर यह कोई राहत में राहत नहीं है कि रैट रेस का चूहा हो जाए, उस दौड़ में जीत कर भी आप रहेंगे तो मुसाहिब। हाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि हम स्त्रियों को रत्नाकर डाकू की पत्नी की मनस्थिति से निकलना ही होगा। हमारे घर में धन किस स्रोत से आता है, जरूरत से ज़्यादा पैसा आता ही है क्यों, इस बात पर सजग रहने का और पिता भाई भाई बेटे की काले धन का स्रोत पता लगाने लगते ही उस पर साम दाम दंड भेद वाले चतुर्मुखी औजार या कांता सम्मत ढंग से अपना सफल प्रतिरोध आजमाना चाहिए। रत्नाकर डाकू की अनाम पत्नी की तटस्थता का या उसका भोला विश्वास हमारे लिए अपराधी है कि तुम धन लूट पाट कर लाओ या मार पीट कर, इससे हमें क्या। स्त्रीवाद जिम्मेदारी लेता है और चूंकि यह हर तरह के बेहतर समाज की जिम्मेदारी लेता है, बाजारवाद से अपने अपने वाले काले धन की चमकार उसे लुभानी नहीं चाहिए।